हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 17 टेक्स्ट नंबर 5। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, आध्यात्मिक धरातल तक आने के लिए प्रेम, श्रद्धा, भाव और पवित्र हृदय और एकाग्र मन से मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सकृजातं सहकर्णरघुनाथं वितं तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादं सहकर्णललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपीकांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गारंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासति गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने श्लोक नंबर 4 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, यजन्ते सात्विकान देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूतगणाश्चय यजन्ति तामसाजना। यानी जो सत्वगुण व्यक्ति होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो रजोगुणी होते हैं वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। यानी कि यहाँ पर प्रभुपाद ने हमें बताया कि इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वाले प्रकार बता रहे हैं कि भाई बाहर से जो जो लोग जिस जिसकी पूजा करते हैं उसके कौन कौन से गुण उसके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से वो कर रहे होते हैं। क्योंकि शास्त्रों के आदेश अनुसार केवल भगवान की पूजा की जाती है, भगवान की पूजा करनी होती है। क्योंकि शास्त्र क्या कहता है कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के आप अंश हो, इसलिए उनका उनकी पूजा करना आपका कर्तव्य है, इसलिए शास्त्र। लेकिन जो शास्त्रों के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं, मतलब शास्त्रों को नहीं मानते हैं, शास्त्रों के आदेशों की पालन नहीं करते हैं और अलग अलग किसी और देवी देवता पर श्रद्धा रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, जो लोग सत्वगुणी होते हैं सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं, इनमें ब्रह्मा शिव अन्य देवता यथा चंद्र इंद्र सूर्य सम्मिलित होते हैं। देवता कई हैं, असत्वगुणी लोग जो होते हैं वो किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। कैसे? जैसे धन किसी को चाहिए होता है तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, किसी को सुंदरता चाहिए होती है तो सूर्य देव की पूजा करते हैं, किसी को सुंदर पति चाहिए होता है तो गौरी माँ की पूजा करते हैं, किसी को अगर ज्ञान चाहिए होता है सरस्वती की पूजा करते हैं। तो ये सब भगवान के अंश और कलाएं हैं, उनका आदर करना होता है, उनको ये डिपार्टमेंट भी सौंपा गया, लेकिन उनको भगवान समझ कर पूजा नहीं करनी होती है। अगर किसी विशेष चीज जैसे अगर हम धन प्राप्त करना चाहते तो हम ऐसे अगर किसी को विद्या की जरूरत होती है और वो सरस्वती माता को प्रणाम करके ये बोल सकता है कि भाई आप भगवान की शक्ति हो, भगवान ने आपको यह डिपार्टमेंट सौंपा है तो आप मुझ पर कृपा करो ताकि मैं भी है ना ज्ञान अर्जित कर सकूं, शास्त्रों को अर्जित करके शास्त्रों के नियमों को समझकर भगवान की भक्ति कर सकूं। यानी कि अगर इंद्रियली हम भगवान की भक्ति के लिए किधर भी जा रहे हैं ना, तो यहाँ विष्णु प्रभुपाद जी हमें बताएंगे आगे कि जितनी भी कृपा हम प्राप्त करते हैं ना भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो कृपा कम है। सारे देवी देवताओं के पास जाए अगर ये सोचकर कि कृपा करो मुझ पर, आप बहुत शुद्ध भक्त हो, भगवान के बहुत निकट हो, आशीर्वाद दो ताकि मैं भगवान की सेवा करूं, तो फिर वो सही है। लेकिन आप ही भगवान हो, आप ही कर सकते हो, ऐसा नहीं। तो आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसी प्रकार जो रजोगुणी है वे यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और अलग अलग लोग है ना, कोई राक्षसों की पूजा करते हैं, कोई देवताओं की पूजा करते हैं। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने द्वितीय विश्वयुद्ध यानी कि दूसरी जंग अजीम जो बड़ी युद्ध थी संसार की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बारे में बताया है कि हमें स्मरण रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध में कलकत्ता के एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करते थे, क्योंकि ये युद्ध जो थी हिटलर की वजह से हुई थी, और क्योंकि बला उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित किया, यानी कि उस युद्ध की वजह से क्योंकि उसको बहुत सारा धन प्राप्त हो गया था, इसे वो समझ जाता हिटलर ही भगवान है, हिटलर ने किया ना। तो मतलब लोगों की बुद्धि इतनी कम हो गई है कि वो ये बात भी समझ नहीं सकते कि वो असुर है, वो राक्षस है, वो युद्ध करवा रहा है, वो भगवान कैसे हो सकता है। लेकिन वो बुद्धि यूज नहीं करते, शास्त्रों को नहीं पढ़ते। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्य किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं किसी न किसी मनुष्य को चुन लेते हैं और उनकी भक्ति करते हुए सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा है। मतलब हैरत है, वो सोचते हैं कि भाई किसी को भी इष्ट बना के पूजा कर लो अगर आप श्रद्धा से कर रहे हो तो फल एक सा है। लेकिन फल एक सा कैसे हो सकता है जब भगवान ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के पास जाओगे, भूतों की पूजा करोगे भूतों के पास जाओगे, अगर कब्रों की पूजा करोगे तो ऐसे लोगों की तरफ जाओगे, तो फल एक सा कैसे होता है। भगवान कहते हैं यदि आप मेरी पूजा करोगे, 9.25 में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर क्लियर किया है, यान्ति देव व्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतान्यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपिमम। लेकिन उनको ये शास्त्र के विषय में पता नहीं होता है, वो सोचते हैं किसी की भी भक्ति कर लो तो एक सा होगा, परिणाम एक सा होगा, एक सा नहीं होता है, अलग अलग होता है जैसा शास्त्र में लिखा हुआ है। और जो इस तरह शास्त्रों की अवहेलना करके तपस्या करते हैं उनके विषय में आज भगवान श्री कृष्ण बहुत ही विशेष बात बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ति ते तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतस मां शैवान्तशरीरस्थं तान्विध्यासुरनिश्चयान्। अशास्त्र, अशास्त्र मतलब जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, विहितम निर्देश जो शास्त्रों का निर्देश है उसको नहीं मानते, गौरम अन्यों के लिए हानिप्रद यानी कि जो खुद नहीं मानते हैं वो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यह शास्त्र विहितम गौरम तप्यन्ते ये तपोजना जो नहीं मानते हैं, तप्यन्ति मतलब तपस्या करते हैं, ये जो लोग तपोजना तपस्या करने वाले लोग, दम्भ अहंकार, दम मतलब घमंड, अहंकार मतलब उनको उनके अंदर घमंड होता है, अहंकार होता है, संयुक्ता उसके अंदर वो प्रवृत्त हो जाते हैं, काम राग बलान्विता यानी काम मतलब इच्छा हवस में, तथा राग मतलब आसक्ति, और बला मतलब बलपूर्वक, अन्विता मतलब प्रेरित, तो काम आसक्ति और बल से प्रेरित हो जाते हैं, कर्षयन्ति कष्ट देते हैं, शरीरस्थम शरीर के भीतर स्थित, अब देखो जो तपस्या करेंगे बहुत कठिन तपस्याएं करते हैं जो शास्त्र में नहीं लिखी हुई हैं, और अपने काम इच्छाओं वासनाओं को पूरा करने के लिए, तो क्या होता है शरीर के भीतर जो हमारे परमात्मा स्थित होते हैं उनको कष्ट मिलता है। साफ भगवान ने कहा कर्षयन्ति शरीरस्थम, उनको शरीर के अंदर बैठे हुए परमात्मा को कष्ट देते हैं, भूत ग्रामम भौतिक तत्वों का संयोग अचेतसः यानी भ्रमित मनोवृत्ति वाले, अब उसको शरीर को भी कष्ट देते हैं और भौतिक तत्वों का जो संयोग यानी ये जो शरीर के अंदर बैठा हुआ परमात्मा को भी देते हैं, और शरीर को भी जो 24 तत्वों से बना हुआ उसको भी दुख पहुंचता है एक्स्ट्रा तपस्या करने से जो शास्त्रों में नहीं लिखी होती है। माम च एव, माम मतलब मुझको, च मतलब भी, एव निश्चय ही, और भगवान यहाँ पर बताते हैं जब शरीर और परमात्मा दो, शरीर और आत्मा दोनों को दुख मिलता है तो उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को भी दुख मिल रहा होता है, तीनों को दुख मिल रहा होता है, किस चीज से, जो शास्त्रों की अवहेलना करते हैं और अपने मनमाने ढंग से अत्यधिक तपस्याएं करते हैं, तपस्या करने से, लेकिन जो काम शास्त्र में नहीं लिखा होता है हमें नहीं करना है। आगे कहते हैं अंतः भीतर शरीरस्थम, शरीर के अंदर यानी कि मैं शरीर के अंदर बैठा हुआ हूं ना परमात्मा के रूप में, तो मुझे भी कष्ट मिल रहा है, आत्मा को भी कष्ट मिल रहा है, उसके शरीर को भी कष्ट मिल रहा है। तान विद्धि आसुरजनम, और जो ऐसा करते ना तो अर्जुन तुम उनको ना असुर समझो, तान मतलब उनको, विद्धि मतलब जानो, असुर निश्चय, असुर निश्चित रूप से उनको असुर जानो, यानी जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत रखते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण क्यों बता रहे हैं कि वो जो लोग शास्त्रों के अनुसार तपस्या नहीं करते हैं, अपनी मर्जी से तपस्या कर रहे हैं, व्रत धारण करते हैं, वो अपने शरीर को, शरीर में बैठे हुए परमात्मा को, शरीर के अंदर स्थित आत्मा को, तीनों को कष्ट पहुंचाते। भगवान क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था, याद है आपको अर्जुन ने क्या पूछा था, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ति श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णम् सत्त्वमाहो रजस्तमा। अब हम ये जो भगवान जो है ना वो सारा इसी क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं। अब अर्जुन ने पूछा कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं बल्कि पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, वो सत्वगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है, यानी कि वो श्रद्धा से पूजा तो कर रहे हैं। अब वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कल बताया कि जो रजोगुण में होते हैं वो राक्षसों की पूजा करते हैं, जो सत्वगुण में है वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो तमोगुण में है भूतों की पूजा करते हैं, और तपस्या के विषय में आज बता रहे हैं, कल पूजा के विषय में बताए और आज तपस्या के विषय में बता रहे हैं कि जो दम्भ और अहंकार से युक्त हो जाते हैं, शास्त्रों के अनुसार पूजा नहीं करते, तपस्या नहीं करते, अपनी मर्जी से तपस्या करते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उनका शरीर भी दुखी होता है, अंदर बैठी हुई आत्मा भी दुखी होती है, और परमात्मा के रूप में जो मैं अंदर बैठा हूँ उनको भी कष्ट मिलता है, तो फिर इन सबको कष्ट हो जाते, उनको तुम आसुरी समझो। अभी वो कोई भले कितनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा से कर रहे हैं, लेकिन वो असुरी हैं। आसुर का मतलब ही क्या है कि वो शास्त्रों को नहीं मान रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, फिर वो कितना ही श्रद्धा से कर रहा है वो आसुरी। भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा तान विद्यासुरी सुर निश्चय, तान मतलब उनको, विद्धि मतलब जानो, आसुरी मतलब राक्षस, असुर निश्चयन, और आसुरों का क्या होगा वो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया है, आसुरी योनि मापन्न मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम प्राप्य वकौंते ततो यान्ते धमाम गतिम, जो आसुरी योनि में जन्म लेते हैं बारंबार उनको उसी इधर ही जन्म लेना पड़ेगा, वो मुझे माम अप्राप्त है, वह मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्योंकि जब तक शास्त्र को नहीं फॉलो करेंगे तब तक भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, जब शास्त्र को श्रवण नहीं करेंगे, शास्त्र के अंदर श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान अर्जित नहीं होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 4.39 में, श्रद्धावान लभते ज्ञान, लेकिन जिसको श्रद्धा ही नहीं होगी शास्त्र में वो ज्ञान कैसे अर्जित करेगा? उसे तो पता ही नहीं चलेगा मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान की सेवा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, भगवान का नाम जप करना एकमात्र साधन है, ये पता ही नहीं चलेगा। तो भगवान ने साफ साफ कह दिया माम अप्राप्त किया, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता जो शास्त्र को नहीं मानता है, शास्त्र के अनुसार अगर नहीं चल रहा है, अपने अहंकार के अनुसार भले कितनी भी तपस्या करता है, उसे बारंबार आसुरी योनों में ही जन्म लेना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं आता। उदाहरणार्थ किसी स्वार्थ के प्रयोजन से तथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति की गई है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। श्री रूपा जी बोलते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, किसी भी अपना कोई प्रयोजन होता है ना, कोई स्वार्थ होता है, उसके लिए कठिन तपस्या करना शुरू कर देते हैं, बस रख लेते हैं। उनको पता नहीं होता है कि शास्त्र में उसका है नहीं, बस वो पीढ़ियों से रखते आ रहे हैं, पीढ़ियों से रखते आ रहे होते हैं। उनसे पूछो कि भाई ये उपवास आप रख रहे हो कौन सी किताब में लिखा हुआ है, कौन सी शास्त्र में? किसी को कोई प्रमाण पता नहीं होता है कि मैं क्यों रख रहा हूँ, किस लिए रख रहा हूँ, कहाँ पर लिखा, बस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मेरे माँ बाप ने ऐसे किया था और है ना मैं भी इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास रखे जाते हैं कि भाई आप उपवास रखो तो क्या होगा कि आपका हृदय शुद्ध होगा, हृदय के अंदर परमात्मा जो है वो विराजमान, जो परमात्मा है उनके दर्शन होंगे, आप जो है वो सत्वगुण में स्थित हो जाओगे। लेकिन अगर आप इस तरह से राजनीतिक या सामाजिक कोई उद्देश्य से करते हो तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनकी इसमें नहीं बताया गया शास्त्रों में, तो वो असुर हैं, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं बताया गया। भगवद गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से असुर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा माम चाहे वांता शरीर अस्तम तान विद्धि आसुर आसुर निश्चयन, उन्हें निश्चित रूप से असुर जानो। तो भगवदगीता में ये एकदम क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि जो अपनी मर्जी से तपस्याएं करते हैं चाहे वो कितनी ही श्रद्धा से क्यों ना कर रहे हो, श्रद्धा की बात नहीं है, श्रद्धा अब यहाँ पर अगर उससे रिलेटेड किया जाए ना 4.39 से, तो उसमें लिखा हुआ है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाले को ज्ञान प्राप्त होगा, फिर यहाँ पर क्यों नहीं उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो क्यों असुर हो रहा है? क्योंकि वो श्रद्धा का मतलब हो रहा है उसका क्या आ रहा है कि वो किसी पर भी श्रद्धा रखे, लेकिन श्रद्धा का रियल वर्ड का मतलब राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि श्रद्धा का मतलब होता है सत्य, धा का मतलब होता है धारण, यानी कि आपको सिर्फ सत्य को धारण करना है, जो सत्य शास्त्र में लिखा हुआ ना उसी को धारण करना है, उसी के ऊपर श्रद्धा रखना है। ऐसा नहीं किसी गधे की कब्र खुदवा लो और उस पर फूल चढ़ाओ कि भाई हाँ मेरी ये उपवास मैं तुम्हारे लिए करता हूँ और बस, श्रद्धा तो उसमें भी होगी लेकिन श्रद्धा का मतलब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति को ले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के ऊपर भी आप श्रद्धा कर सकते हो, किसी के ऊपर भी आप किसी की उपासना करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। कृष्ण भक्ति को ले यानी कि आपको आपके अंदर ये पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करनी है और जब मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा तो सर्व कर्म कृत है, मेरे सारे कार्य चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो चाहे ना कोई और हमारी प्रॉब्लम है जो भी है, कृष्ण बैठे हैं ना, कृष्ण को सर्वस्व समझना ही शास्त्रों का एकमात्र आदेश है। अहम सर्वस्व प्रभु, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं 10.8 में कि मैं सबका प्रभु हूँ, तो भगवान की भक्ति करना ही शास्त्रों का एकमात्र आदेश है। हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, अपनी मनमानी ढंग से कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, तपस्या नहीं करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही हमें ना उपवास करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इस कलयुग में आपको स्पेशली जो उपवास करना है वो एकादशी का। अगर आप एकादशी का उपवास बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, मतलब पूरे नियमों अनुसार कर रहे हो एकादशी का उपवास, जब अच्छा अपना जप करते हो, स्पेशली एकादशी में 25 माला का विधान बताया श्रील प्रभुपाद ने, और इसके अलावा अनाज से बिल्कुल हमें ना नहीं खाना है, उसके अतिरिक्त ज्यादा से ज्यादा जप करना है, कृष्ण कथा सुननी है, अगर सुबह मंगल आरती अटेंड करनी, अगर हम उस एक उपवास को भी अच्छे तरीके से करते हैं ना, तो अन्य उपवासों की आवश्यकता नहीं। बस फिर क्या करना है, जो है ना भगवान विष्णु तत्व है ना, जैसे रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और नरसिंह चतुर्थी, जो विष्णु तत्व के अवतार है ना, इनका इनके दिन उपवास करना और एकादशी। बाकी और कोई कठिन तपस्या है जो भी हम लोग उल्टे सीधे उपवास रख रहे हैं ना, जिनका किसी भी शास्त्र में जिक्र नहीं है, तो उनको यहाँ पर तो भगवान ने साफ साफ कह दिया कि जो शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, तान विद्या सुर निश्चयान, तान मतलब उनको, विद्या मतलब जानो, असुर मतलब राक्षसी निश्चयान, एवं निश्चित रूप से उनको असुरी जानो, जो ऐसे उपवास करते हैं जो मेरे जिनकी इच्छा, जिनका रिजल्ट जो है वो मेरे से प्रेम प्राप्त करना नहीं है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना नहीं है, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना नहीं है, तो वो क्या है, निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि या तो उन्हें अहंकार है, गर्व है, काम है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उनको अज्ञानता है, याद नहीं रहता, उनको शास्त्र वास्त्र समझते नहीं है और अपनी मर्जी से करते हैं, और अज्ञानता तमोगुण का ना लक्षण है और तमोगुण हमें राक्षस बनाएगा। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे आत्मा को भी कष्ट पहुंचता है। यहाँ पर भगवान ने बताया ना, जो थर्ड लाइन में बताया, कर्षंती शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसा, कि वो शरीर को भी कष्ट, जाहिर सी बात है शरीर भी इतनी उल्टी सीधी तपस्याएं करेगा तो उसको भी कष्ट है, अंदर बैठी हुई आत्मा को, अंदर विराजमान परमात्मा, सबको कष्ट मिलता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चित ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। तो फिर क्या करते हैं, वो ऐसे कठिन तपस्याएं कर लेते हैं और अहंकार के अनुसार क्या करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। उन तपस्या के बाद उनको बल आ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर दूसरों को कष्ट मिलता है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। अब ऐसे उपवास जो उल्टे सीधे ही लोग रखते हैं, जो शास्त्रों में नहीं लिखे हुए हैं, आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रुओं या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर देगा। अब वो क्या सोचते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, रावण का बेटा जो था इंद्रजीत, वो निकुम्भुला का यज्ञ करता है, बहुत कठिन, इतनी जब मैंने रामायण में देखा था उनको, इतना वो सारे वानर आते थे, आए थे और उनकी तपस्या को भंग करने का इतना प्रयत्न कर रहे थे, उसको इतना तंग कर रहे थे, लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी तीव्र थी उसके अंदर कि वो बड़े अच्छे तरीके से एक रथ निकालना चाहता था वो उस यज्ञ कुंड से, और वो इतनी अच्छी तपस्या कर रहा था, हनुमान, सुग्रीव, ये सारे नल नील सब आए उसकी तपस्या करने के लिए, उसको इतना तंग किया कि उसका ध्यान टूटे, बट उसका ध्यान ही नहीं टूट रहा था, लेकिन जब रथ निकल रहा था तो हनुमान जी ने पता नहीं इतना जोर से पत्थर वत्थर फेंक के वो रथ है ना तोड़ दिया, आधा निकला था, फिर उसको इतना गुस्सा। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो ऐसी तपस्याएं करते हैं और सोचते हैं कि इन तपस्याओं के द्वारा वो अपनी विपक्षियों को, अपने शत्रुओं को हरा लेंगे और अपनी इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवासों से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि भगवान ने जो नहीं कहा है, भगवान के शास्त्रों में जो नहीं लिखा हुआ है, यदि आप ऐसा कार्य करते हो तो जाहिर सी बात है आपके लिए हानिकारक होगा। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमोदित नहीं है, भगवान ने नहीं बताया। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। अक्षर भगवान श्री कृष्ण ने कब कहा, चौथी लाइन के लास्ट वर्ड में, तान विद्या असुरन निश्चयन, कि वो असुर हैं। भगवान ने साफ साफ कह दिया कि जो अपनी मर्जी से तपस्या करते हैं वो असुर हैं। ऐसे प्रश्न भगवान के अपमान स्वरूप हैं, अब भगवान ऐसे प्रदर्शन, यानी कि भगवान का तो एक तरह से अपमान हुआ ना, शास्त्रों की आदेशों की अवहेलना करना ऐसा। ये कौन सा है? तीसरा नाम अपराध हम पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना कर रहा है और मनमाने ढंग से पूजा कर रहा है। और पहले भी हमने अभी भी पढ़ा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम अकारकत, जो शास्त्रों की अवहेलना करता है और अपने काम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपनी मर्जी से विधि विधानों का पालन करता है, न शांति न सिद्धि न अपनोती न शांतिम न परम गतिम, उन्हें ना सिद्धि मिलती है ना शांति मिलती है ना परम गति मिलती है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों की अवहेलना करते हैं और इस तरह से वो भगवान की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र तो साक्षात भगवान का आदेश है ना, तो उनका अपमान हो रहा है क्योंकि उन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है और शास्त्र जो है वो भगवान ने दिए हैं। इस प्रसंग में अचेत सह शब्द महत्वपूर्ण है, जो थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है ना, भूत ग्राम अचेतस, श्रभुपादी बोलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए, जो ऐसी स्थिति में नहीं करता है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करता है और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर देता है। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण रखना चाहिए। अब श्रील प्रभुपाद जी हमें याद करा रहे हैं कि आपको क्या याद रखना है, जो शास्त्रों, यहाँ पहले तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि हमें शास्त्रों के विधि विधानों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये शास्त्र हमारे लिए ही बनाए, ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं ना, वो हमारे लिए लिखे हुए हैं। हम मनुष्य हैं, शास्त्र हमें पढ़ना है। अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, शास्त्र को नहीं समझ रहे, इसका मतलब ये थोड़े है कि हम लोग है ना बच जाएंगे कानून के नियमों से। हमें शास्त्रों को समझना पड़ेगा, और अगर हम लोग नहीं समझ रहे हैं तो हम असुरों जैसे कार्य करेंगे। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, शास्त्रों की उपेक्षा से अवज्ञा करके और तपस्या, क्या लिखा हुआ है, आदेशों का पालन करना चाहिए और स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण रखना चाहिए। हाँ, कौन सी आसुरी परिणति को श्री रूपा जी हमें याद कराना चाह रहे हैं यहाँ पर, जो 16.20 में भगवान ने बताई थी, जो कि आसुरी योनि में जो काम करेंगे उनके साथ क्या होगा। 16.20 भगवान ने कहा था, आसुरी योनिमापन्नम मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्य धामां गतिम्। कि जो आसुरी योनि वाले होते हैं वो बारंबार आसुरी योनियों में ही प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर भगवान ने क्या बताया कि जो शास्त्रों की विधि विधानों का पालन नहीं करते, मन माने ढंग से भले कितनी श्रद्धा से पूजा करते हैं, तान विद्या सूरज निश्चयान, उन्हें निश्चित रूप से आसुरी जानो। और आसुरों का क्या हशर होगा वो भगवान 16.20 में क्या बताते हैं, माम प्राप्याय व कौनते ततो यान्ते धमाम गतिम, कि वो मुझे तो प्राप्त नहीं करेंगे। डेफिनेटली शास्त्र में लिखा हुआ है भगवान की भक्ति करो, अगर वो इसके अतिरिक्त चाहे वो किसी की भी कितनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं तो वो भगवान को तो प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि पहले मनुष्य जैसी इच्छाएं करेंगे, फिर कुत्तों जैसी इच्छाएं करेंगे, तो फिर निम्न चिंतम योनियों में जाते जाएंगे, गर्क होते जाएंगे। कभी भगवान श्री कृष्ण साफ साफ 16.20 में कहते माम अप्राप्य है वह मुझे करो, अभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति, जो इनका ये जो अंतिम परिणति होने वाली है, परिणाम होने वाला है, उसको स्मरण रखना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णित किया जा चुका है। भगवान ऐसे लोगों को, आसुरी व्यक्तियों को यहां जन्म लेने के लिए बाध्य कर देते हैं। क्या करते हैं भगवान, मूढ़ा जन्मनी जन्मनी बारंबार इसी संसार में पैदा करते रहते हैं, फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने बंधन को जाने बिना जन्म जन्मांतर तक आसुरी योनियों में जीवन में रहते हैं। और फिर क्या करें वो, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ा, शास्त्र के गुरु नहीं किया, गुरु ने उन्हें कुछ सिखाया नहीं, शास्त्र को समझा नहीं, अपनी मर्जी से जीते रहते हैं और बहुत दुख की बात है, मुझे ये दुख बहुत होता है जब मैं ये वाला श्लोक पढ़ती हूँ ना 16.20, मुझे बहुत दुखी वाला श्लोक लगता है। उन लोगों के लिए इतना दुख होता है जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, जो भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, हृदय से रोना आता है कि कैसे समझाएं इनको, कैसे उनका जीवन खराब हो रहा है, वो आरंभ जन्म मृत्यु के चक्कर में बसे, कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं, मुझे उनकी श्रद्धा से लगता है कि उनसे वो सारी श्रद्धा ही मैं ले लूं कि वो उन भक्तों को दे दूं जो कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं। उनके पास वैसे श्रद्धा कम होती है, बस उनको कारण इतना इतना विश्वास नहीं होता है उनको जितना आम लोग अपने निर्मित किए हुए जो शास्त्रों के अनुसार नहीं होते हैं, ऐसे उसूलों और विधि विधानों को इतनी प्योरिटी से कर रहे होते हैं जो शास्त्र में नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन इतनी श्रद्धा से कर रहे होते हैं, लेकिन दुख होता है उनको देख के कि उनको कभी कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। तो हमारा कर्तव्य है कि जहाँ तक पहुँचती है हमें अपनी आवाज पहुँचानी चाहिए ताकि हम उनको बचा सकें, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना, वो ज्ञान शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो उनको भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध कभी भी पता नहीं चलेगा, और नहीं पता चलेगा तो भगवान की सेवा के लिए उनका मन कैसे प्रेरित होगा, और जब भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर तक बारम्बार यहीं पर आना पड़ेगा उनको, और जन्म जन्मांतर तक आसुरी जीवन में रहते रहेंगे। असुर का मतलब ये नहीं है कि वो राक्षस बनकर दो सिंह लेकर आएंगे, असुर का मतलब ये होता है कि जो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे वो असुरी हैं, क्योंकि वो कभी भगवान उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, उन्हें बारंबार इस भौतिक धरा पर, इस पवर्ग वाली जहाँ पर कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, बारंबार आना पड़ता है। तो यहाँ पर बताया कि असुरी जीवन में रहते हैं, किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए हैं कि गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके तो वे इस भवबंधन से छूटकर अंततोगत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। श्रीपाद जी बोलते हैं कि अगर उनमें से कोई ऐसा जीव जो कि भगवान की कृपा से, गुरु कृपा उसको प्राप्त हो जाती है, तो फिर वो क्या करता है, इस भावबंधन से छूटकर अंततोगत्वा परम गति को प्राप्त हो सकता है। बस एक ही मार्ग है, गुरु महाराज, अगर किसी को शुद्ध गुरु का चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमियते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति लता भी। जो भक्ति का जो बीज है ना, वो बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है, जब गुरु और कृष्ण की कृपा हो जाती है ना तब। अब आपको ये लगेगा कि फिर ये कृपा इतनी सीमित क्यों है, सब लोगों को क्यों मिलती है, मिलती नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों को मिलती है। कृपा सीमित नहीं होती है, भगवान और गुरु की कृपा पता है कैसी है, जैसे वर्षा होती है ना उस तरह। वर्षा कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं रेगिस्तान में नहीं पड़ना चाहिए मुझे, या यहाँ पर समुद्र है यहाँ पर मेरी क्या जरूरत है, या फिर है ना मुझे वृक्षों के ऊपर पड़ना चाहिए, खाली सड़क पे नहीं पड़ना चाहिए। वर्षा तो बरसती रहती है, कृपा जो है वो वर्षा की तरह बरसती है, सबके ऊपर बरसती है। अब आप कहोगे फिर सब भीगते क्यों नहीं, सब भीगते इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ लोग जो कि भीगना नहीं चाहते हैं उन्होंने अम्ब्रेला पकड़ी हुई है। अब क्या करें, उन्होंने अम्ब्रेला पकड़ी हुई है, उनके पास ये जो श्रद्धा है ना वो है कि हम भगवान की बात को समझ सके, हम गुरु एक हृदय में श्रद्धा हमें अपनी डेवलप करनी है कि नहीं मैं समझना चाहता हूँ, इच्छा अपनी, क्योंकि भगवान ने हमें फ्री विल दिया है ना और बुद्धि भी दी है। जब तक आप अपनी उस फ्री विल का सदुपयोग नहीं करते हो, इच्छा नहीं करते हो ना कृपा प्राप्त, इच्छा करो तो कृपा प्राप्त होगी, कितना ही दूर आप, जरूरी नहीं है आपके हृदय में खाली इच्छा होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि आपके सानिध्य में कोई गुरु है नहीं है, आप किसी को जानते नहीं हो, ये नहीं, बस आप इच्छा करो, आपको किसी न किसी माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भगवान दिला देते हैं। भगवान देखते हैं कि भाई इनकी श्रद्धा पक्की है, वो जानना चाहते हैं, शास्त्र को समझना चाहते हैं, तो कोई ना कोई तरीका आपको सिखा देते हैं। किसी को श्लोक सीखने होते हैं, किसी को है ना भगवद गीता सीखनी होती है, किसी को क्या सीखना होता है। आज तो कितने सारे ना इंटरनेशनल सब हम लोग सीख सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है कि कैसे कैसे भक्तों का संग कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उनसे श्रवण कर सकते हैं। तो यदि हमारी श्रद्धा है तो भगवान हमें प्रोवाइड करेंगे। श्रद्धा अपनी डेवलप करनी होती है, और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर किसी की श्रद्धा इतनी अच्छी डेवलप हो जाती है और भाग्य से उन्हें गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तो निश्चित रूप से अंततोगता परम गति यानी कृष्ण को प्राप्त होते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।